नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी को क्राइम कहना कुछ गलत होगा, पर हमारे देश के लॉ के मुताबिक सुसाइड यानी कि आत्महत्या एक अपराध है, इसलिए इस कहानी को भी क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कहानी में एक परिवार के चार लोगों ने, जिसमें दो जुड़वा 14 साल के बच्चे भी थे, एक साथ अपनी जान दे दी। साथ ही साथ सितंबर के महीने को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ के महत्व को समझने के लिए ये कहानी एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग आज के इस एपिसोड में इच्छा मृत्यु के बारे में भी बात करेंगे। पूरे विश्व में सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस ने डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को फिर से दुनिया के सामने रखा है, पर ऐसे सुसाइड देश दुनिया में रोज बढ़ते जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में 16-17 साल के कई टिकटॉक पे वीडियो बनाने वालों ने सुसाइड किया है। उनकी खबर बस कुछ घंटों ही सोशल मीडिया पर चली, पर एज ए सोसाइटी हम लोगों को इस बात पर सोचना पड़ेगा। अब आप उस डिप्रेशन के बारे में सोचिए जिसमें एक बाप अपनी तो जान देता ही है, साथ ही साथ अपने 14 साल के बच्चों, जिनको वो बहुत प्यार करता था, उनको भी मार देता है। पिछले साल दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ अपनी जान दे दी थी। बुराड़ी का किस्सा किसी और दिन सुनेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले अभिषेक सक्सेना की फैमिली की बात करेंगे। अभिषेक सक्सेना 45 साल के, उनकी वाइफ प्रीति 43 साल की, उनके दो जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की 14 साल के। ये सब सितंबर 2019 के एक वीकेंड में इंदौर के पास के एक रिजॉर्ट में जाते हैं। इन्होंने 2 दिन के लिए रूम बुक किए थे। वैसे तो वो रिसॉर्ट एक फेमस टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट पर बना है, पर ये फैमिली रिसॉर्ट में चेक इन करने के बाद कहीं भी घूमने नहीं जाती है। वो चेक इन करने के बाद उस कमरे से बाहर तक ना निकली। चेक इन करने के बाद अभिषेक ने बस एक बार रिसेप्शन से 2 बोतल पानी मंगाया। इस पानी का उपयोग सुसाइड के लिए किया गया था, जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ये 2 पानी की बोतल के अलावा उनकी तरफ से होटल स्टाफ को आगे कोई संपर्क नहीं किया गया। अगले दिन शाम को इस परिवार के चेक इन करने के करीब 30 घंटे बाद रूम क्लीनिंग स्टाफ उनके रूम की सफाई करने गया। बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के ओनर को बुलाया गया, डुप्लीकेट चाबी से उनका गेट खोला गया। अंदर 2 कमरे थे। एक कमरे में बेड पर दोनों जुड़वा बच्चे कंबल के अंदर थे, बस उनका सर कंबल के बाहर था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। दूसरे कमरे में पति पत्नी बेड पर और उनके मुंह से भी झाग निकल रहा है। चारों का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूरे रिसॉर्ट का मुआयना करती है। रूम के अंदर टेबल पर कुछ कप रखे हुए थे और वहीं बगल में एक वेइंग मशीन थी। ये वो वजन नापने वाली मशीन थी जो आम तौर पर सोने और चांदी के काम करने वाले जौहरियों के पास होती है। इस मशीन पर आप चावल के दाने से भी छोटी चीज का भार नाप सकते हैं। पुलिस को होटल रूम से सोडियम नाइट्रेट का पाउडर भी मिला। ये पाउडर एकदम आटे जैसा दिखता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम का एक सॉल्ट होता है, जिसका उपयोग फर्टिलाइजर और बाकी अन्य सामानों में होता है। पर अगर आम इंसान इसका ओवरडोज ले ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसकी कितनी मात्रा लेने पर इंसान की जान चली जाएगी, वो इंसान के खुद के भार पर डिपेंड करता है। आमतौर पर 40 से 50 ग्राम का सोडियम नाइट्रेट किसी भी इंसान को मार सकता है। अभिषेक ने यही सोडियम नाइट्रेट मशीन से तौला और पानी में मिलाकर पहले अपने दोनों बच्चों को दिया और फिर अपनी वाइफ प्रीति के साथ खुद भी पी लिया। उस पानी में क्या था वो पति पत्नी जानते थे, पर बच्चों को नहीं पता था कि ये पानी उनकी जान लेने के लिए है। पुलिस ने सुसाइड का कारण जानने के लिए जांच शुरू करी। अभिषेक सक्सेना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी सैलरी 2 लाख प्रति महीना के ऊपर होती थी, पर कुछ महीनों पहले रिसेशन की वजह से उसकी नौकरी चली गई और वो नई नौकरी नहीं खोज पा रहा था। इस बीच उसने अपनी सेविंग शेयर मार्केट में लगाई और वहां भी उसको बहुत नुकसान हुआ। उसके सारे पैसे डूब चुके थे। इस वजह से पति और पत्नी दोनों कई हफ्तों से डिप्रेशन में थे। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। अभिषेक के रिश्तेदारों ने बताया कि अभिषेक उधार लेने के बिल्कुल खिलाफ था। उसने लाइफ में कभी किसी से उधार नहीं लिया था। इस वजह से उसने कभी किसी से कोई मदद भी ना मांगी। उसके खुद के रिश्तेदारों को भी नहीं पता था कि अभिषेक और उसकी फैमिली किस मुश्किलों से गुजर रही थी। इस केस को पुलिस ने सुसाइड बनाकर बंद कर दिया। अब थोड़ी बात इच्छा मृत्यु के लॉज की कर लेते हैं। इसे इंग्लिश में यूथनेशिया कहा जाता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं और अगले कुछ महीनों में आपकी मौत पक्की है, साथ ही साथ आपके आखिरी दिन बहुत दर्दनाक होंगे, तो आपके पास इच्छा मृत्यु का एक ऑप्शन होता है। इच्छा मृत्यु को लेके अलग अलग देश में अलग अलग कानून है। कुछ जगह इसके रूल्स आसान है तो कुछ जगह बहुत मुश्किल। कई जगह तो इच्छा मृत्यु पर बैन ही लगा हुआ है। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु पाने के लिए लॉस काफी आसान है। हमारे देश से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को लीगल प्रॉब्लम के बिना आसानी से खत्म करने के लिए वहां जाते हैं। इसे मीडिया की तरफ से सुसाइड टूरिस्ट का नाम दिया गया है, जो दूसरे देश में घूमने के लिए नहीं बल्कि इच्छा मृत्यु पाने के लिए जाते हैं। इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। एक एक्टिव, जब पेशेंट की लाइफ को खत्म करने के लिए उसे कोई स्पेशल तरह की दवा दी जाए जो उसे पेनलेस डेथ प्रदान करेगी। दूसरी पैसिव, इसमें सपोज एक पेशेंट कई सालों से वेंटिलेटर पर जिंदा है या वो कॉमा में है, मतलब वो टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदा तो है पर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। उसे मिलने वाली टेक्नोलॉजी की मदद को छीनकर उसकी मौत सुनिश्चित करी जा सकती है। इसे पैसिव इच्छा मृत्यु कहा जाता है। जसवंत सिंह, जो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, उनका 2014 में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद से वो कोमा में ही है। इस केस में अगर उनको इच्छा मृत्यु देने के लिए अगर उनकी मेडिकल हेल्प को बंद कर दिया जाए तो इसे पैसिव इच्छा मृत्यु कहा जाएगा। आज की डेट सितंबर 2019 में भी जसवंत सिंह कोमा में ही है। एक और बहुत फेमस केस है। 1973 में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अरुणा पर एक वार्ड बॉय ने सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसके बाद से अरुणा कोमा में चली गई और तब से वो अपने जीवन के आखिरी समय तक कोमा में ही रही। 2009 में उनको पैसिव इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पर कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। बाद में 2015 में अरुणा जी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। गौर करिएगा कि अरुणा जी को 42 साल तक ऐसी हालत में जीना पड़ा। वो कोमा में रही और ऐसी ऐसी परेशानियां झेलती रही जिसे इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। देश भर में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु को अलाउ कर दिया। पर आज भी हमारे देश में एक्टिव इच्छा मृत्यु बैन ही है, मतलब आपको इच्छा मृत्यु के लिए डॉक्टर कोई दवा नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से अगर इस एक्टिव इच्छा मृत्यु के लिए कोई लॉ इंडिया में आता है तो वो हमारे देश में सुसाइड के रेट को कम करेगा। सुसाइड करने वाला कोई भी व्यक्ति पेनलेस डेथ की खोज करता है। अगर मेडिकल तरीके से पेनलेस डेथ का रास्ता होगा तो वो व्यक्ति जिसे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं वो हो सकता है सुसाइड के लिए मेडिकल हेल्प की मांग करें। अब यहाँ डॉक्टर उससे बात कर सकते हैं, उसे साइकोलॉजिकल हेल्प दे सकते हैं और इन सब के बाद उसकी सुसाइड की इच्छा को दूर किया जा सकता है। बाकी अरुणा जी जैसे केस में पेशेंट को जबरदस्ती एक पेनफुल जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ऋतिक रोशन की एक मूवी गुजारिश में इस मुद्दे को काफी सही तरीके से उठाया गया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी वो मूवी अवश्य देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस सुसाइड रोकने के आइडिया के बारे में आपका क्या विचार है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।